का था, रूह वही रूप नया।
आज के अतीत संस्मरण, भीष्म साहनी। जिंदगी में तरह तरह के नाटक होते रहते हैं। मेरा बड़ा भाई, जो बचपन में बड़ा आज्ञाकारी और भला मानस हुआ करता था, बाद में जुझारू स्वभाव होने लगा था। मैं जो बचपन में लापरवाह, बहुत कुछ आवारा, मस्त मौला हुआ करता था, भीरू स्वभाव बनने लगा था। अब सोचता हूं, इसमें मेरे शुभचिंतकों का भी अच्छा खासा योगदान रहा था, जो बात बात पर मेरी तुलना मंत्री जी के बड़े बेटे और छोटे बेटे में उतना ही अंतर है जितना नॉर्थ पोल और साउथ पोल में है। वो गोरा चिट्टा है, हंसमुख है, फुर्तीला है, जबकि छोटा मरियल है। उसे तरह तरह के खेल सूझते हैं। वो लिखता है तो मोती परोता है, जबकि छोटा मनमानी करता है, आवारा घूमता है, पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता। पर धीरे धीरे न जाने कब से और क्यों कर एक प्रकार की हीन भावना मेरे अंदर जड़ जमाने लगी। वो गोरे रंग का है, मैं सांवला हूं। वो हष्टपुष्ट है, मैं दुबला हूं। वो शरीफ है, मैं गालियां बकता हूं, टप्पे गाता हूं। अब तक तो हमारा रिश्ता बराबरी का रहा था। ये सब सुनते जानते हुए भी मैं उससे दबता नहीं था। कोई कुछ भी कहता रहे, मैं अपनी राह जाता था। पर अब लोगों की टिप्पणियां सुन सुन का मेरा मन बुझने लगा था। धीरे धीरे हमारे बीच पाए जाने वाले अंतर का बोध मुझे स्वयं ही होने लगा और मैं अपने को छोटा महसूस करने लगा। यहां तक कि मैं मानने लगा था कि मैं जिस मिट्टी का बना हूं उसी में कोई दोष रहा होगा। मैं उससे ईर्ष्या तो करता ही था, पर यह ईर्ष्या मुझे विचलित नहीं करती थी। मैं अपनी धुन में जो मन में आता था वो करता रहता था, पर अब मैं उसे खम खाने लगा था। अब एक ओर ईर्ष्या, दूसरी ओर छुटपन का बोध और इस पर उसके प्रति श्रद्धा भाव। यह अजीब सी मानसिकता मेरे अंदर पनप रही थी। पहले उसकी पहलकदमी पर चकित हुआ करता था, उसे नए नए खेल सूझते हैं, मैं उत्साह में उनमें शामिल हो जाता, पर हमारे बीच बराबरी का भाव बना रहता था। पर अब तो वो मेरा हीरो बनता जा रहा था। यदि उसके प्रति मेरे अंदर विद्रोह के भाव उठते तो बेहतर था, तब मैं अपनी जगह पर खड़ा तो रहता। अब तो जो वो कहता वही ठीक था, मैं उसका अनुसरण करने लगा था। और चूंकि वो मुझसे प्यार करता था, बड़े भाई का सारा वात्सल्य मुझ पर लुटाता था, मैं उत्तरोत्तर उसका अनुगामी बनता जा रहा था। वो नाटक खेलता तो मैं भी बड़े चाव से उसके साथ नाटक खेलने लगता। वो तीर कमान चलाने लगता तो मैं भी वही कुछ करने लगता। और इसी वृत्ति ने ऐसी जड़ जमा ली कि धीरे धीरे मेरी दबंग तबीयत शिथिल पड़ने लगी। इस नए रिश्ते को मेरे प्रति उसके स्नेह ने और ज्यादा मजबूत किया। जब मैं उससे झगड़ता तो मुझे भावों में भर लेता। एक साथ एक ही बिस्तर में सोते हुए जब मैं उससे गुस्से से लाते जमाता, उसके हाथ नोच डालता, तब भी वो मुझ पर हाथ नहीं उठाता था। इस तरह मेरी अपनी मौलिकता बहुत कुछ दबने लगी थी। ये श्रद्धा भाव मेरे स्वभाव का एक ऐसा अंग बना कि धीरे धीरे हर हुनरमंद व्यक्ति को अपने से बहुत ऊंचा और स्वयं को बहुत नगण्य और छोटा समझने लगा। हम लोग अपने घर में ईश्वर स्तुति के भजन गाते थे। संध्योपासना से जुड़े मंत्र, नीति प्रधान दोहे, चौपाइयां आदि पर ये लोग साहित्य कृतियों के अधिक बातें करते। अब सोचता हूं तो दूर बचपन में ही घर में ऐसा माहौल बनने लगा था। मां के मुंह से सुनी हुई कहानियां, विषाद भरे गीत, आर्य समाज के जलसों में सुनी दृष्टांत कथाएं, जलसों पर ही प्राप्त होने वाले कहानी संग्रह आदि हमारी रुचियां यदि साहित्य उन्मुख हुई तो इसका श्रेय बहुत कुछ हमारे घर के वातावरण को है। और उसमें इन फुफेरी बहनों की बहुत बड़ी देन रही। किसी झटके से हम लोग साहित्य की ओर उन्मुख नहीं हुए। इस तरह जब लिखना शुरू किया तो इसके पीछे कोई विशेष निर्णय अथवा आग्रह रहा हो ऐसा भी नहीं था। कोई नया मोड़ काटने वाली बात नहीं थी। निर्णय करने का अवसर तब आया था जब साहित्य सृजन को जीवन में प्राथमिकता दी जाने लगी थी। तब अन्य सभी वस्तुएं गौण होने लगी थी। जन्मजात संस्कारों की भी संभवतः कोई भूमिका रही होगी। हमारे घर में जब कभी हमारे पूर्वजों की चर्चा होती तो माँ हमारी दादी के बहुत गुण गाया करती। वो तो उन्हें देवी कहा करती थी। जब भी उनकी बातें करती तो बड़े श्रद्धा भाव से। एक घटना की चर्चा तो वो अक्सर किया करती। तुम्हारी दादी भी कवित कहती थी, ईश्वर भक्ति के बड़ी नेम धर्म वाली स्त्री थी, पूजा पाठ करने वाली देवी थी देवी। और माँ सुनाती, तुम्हारे पिताजी का छोटा भाई भरी जवानी में चल बसा था, न जाने उसे क्या रोग हुआ, देखते देखते चला गया। तुम्हारी दादी के लिए ये सदमा सहना बहुत ही कठिन था, पर वो शांत रही, अपने जवान बेटे का सिर अपनी गोद में रखे सारा वक्त जाप करती रही। जात बिरादरी की औरतें टिप्पणियां कसा करती, हाय हाय ये कैसी संगदिल माँ है, जवान बेटा चला गया और विलाप तक नहीं करती, रोती तक नहीं। इस दिशा में एक और चौंकाने वाला अनुभव हुआ। बरसों बाद जब मैं स्वयं कहानियां लिख लिख कर पत्र पत्रिकाओं को भेजने लगा था और मेरे पिताजी मेरे भविष्य के बारे में शंकित से उठे थे, तो एक दिन अचानक ही कहने लगे, मैंने भी एक बार नॉवेल लिखा था। मैं चौंक गया, ये मेरे लिए सचमुच चौंकाने वाली बात थी। पिताजी तो व्यापारी थे और हम दोनों भाइयों को अपने ही कारोबार में शामिल करना चाहते थे। आपने कभी बताया तो नहीं, मैंने कहा। 10वीं कक्षा की परीक्षा दे चुकने के बाद मैंने वो नॉवेल लिखा था। फिर क्या बात आई गई होगी, उन्होंने इस लहजे से कहा मानो मूर्खों की सी हरकतें छोटी उम्र में हर कोई करता है, इसमें अचरज की क्या बात है। संभव है कहीं ना कहीं साहित्य सृजन में हमारी रुचि किसी हद तक हमें संस्कार रूप में अपने परिवार से मिली हो। और बलराज की साहित्यिक रुचि तो शीघ्र ही कविता में व्यक्त होने लगी थी। गुलदस्ता से क्यों तूने ठुकरा के मुझे फेंका, गो घास पे उगता हूं क्या फूल नहीं हूं, उन्होंने 15-1 वर्ष की अवस्था में ये शेर कहा था। और जब भगत सिंह को फांसी दी गई तो बलराज ने पूरी की पूरी कविता अंग्रेजी में भगत सिंह की पुण्य स्मृति में कह डाली थी। हम अपने संस्कार सचेत रूप से ग्रहण नहीं करते, कब कौन सी घटना कहीं गहरे में अपनी छाप छोड़ जाए हम कुछ नहीं जानते। कुछ यादें मरती नहीं हैं, कुछ घटनाओं अनुभवों की यादें तो बरसों बाद भी दिल को मतती रहती हैं। भले घटना अपना महत्व खो चुकी हो और उसका डंक कब का टूट चुका हो। ऐसी ही एक याद मेरे हॉकी संबंधी अनुभवों से जुड़ी है। कॉलेज में दाखिले के दूसरे साल मैं कॉलेज की हॉकी टीम में ले लिया गया था और उस दिन मुझे यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट का पहला मैच लॉ कॉलेज के विरुद्ध खेलना था। मेरा दिल बल्लियों उछल रहा था, आखिर मेरे दिल के साथ पूरी हुई थी। अब भी उस घटना को याद करता हूं तो दिल को झटका सा लगता है। एन जब टीम मैदान में उतर रही थी और मैं मैदान की ओर बढ़ रहा था तो कप्तान ने मुझे बुलाकर मेरी जगह एक अन्य खिलाड़ी अताउल्ला नून को बुला लिया। मैं भौचक्का सा देखता रह गया। खेल शुरू हो गया। मैं ग्राउंड के बाहर खेल की पोशाक पहने हाथ में स्टिक उठाए हैरान सा खड़ा का खड़ा रह गया। फिर मेरे अंदर एक ज्वार सा उठा और मैं वहां से लौट पड़ा, साइकिल उठाई और घर की ओर चल पड़ा। मैं थोड़ी दूर गया था जब दूसरी ओर से कॉलेज की टीम का एक पुराना खिलाड़ी प्रेम साइकिल पर आता हुआ नजर आया। वो मैच देखने जा रहा था। मुझे लौटता हुआ देखकर वो हैरान रह गया, क्या मैच नहीं हो रहा, लौट क्यों रहे हो? मैंने केवल सिर हिला दिया, वो आगे निकल गया। मैं बेहद अपमानित महसूस कर रहा था और रोता हुआ घर पहुंचा। घर लौटते ही मैंने स्टिक को कोने में रखा और मन ही मन गांठ बांध ली कि अब हॉकी के मैदान का मुंह नहीं देखूंगा, हॉकी स्टिक को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। 2 बरस तक बेहद चाव से और सब कुछ भूल कर खेलते रहने के बाद मैंने सहसा ही हॉकी के मैदान की ओर पीठ मोड़ ली और अपने साथ ही खिलाड़ियों से भी मिलना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद कॉलेज टीम का कप्तान चिरंजीव मिला। तुम चले क्यों आए, उसने बेतकल्लुफी से पूछा। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। वो कहने लगा, उस दिन हमने अतानून को खेलने का मौका दिया, ये कॉलेज में उसका आखिरी साल है इसलिए उसे कॉलेज कलर मिल जाएगा। पर मैं अंदर ही अंदर इतना घुड़ रहा था कि मैंने मुंह फेर लिया, कोई उत्तर नहीं दिया। उसे इतना भी नहीं कहा कि अगर यह बात थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। दिन बीतने लगे, मैंने हॉकी खेलना छोड़ दिया। अब उस घटना को याद करते हुए मुझे पछतावा होता है, मैंने झूठे दंभ के कारण हॉकी खेलना छोड़ दिया। जिसे मैं आत्मसम्मान समझ रहा था वो झूठा दम्भ ही था और बड़ा बचकाना निर्णय था। और मेरे इस व्यवहार के पीछे एक और कारण भी रहा था, मैं अपने भाई के पद चिन्हों पर चल रहा था। कुछ ही समय पहले बलराज ने अपने बोट क्लब से इस्तीफा दे दिया था। वो कॉलेज के बोट क्लब का सेक्रेटरी था। क्लब के अध्यक्ष प्रोफेसर मैथाई द्वारा इतना भर पूछे जाने पर कि तुमने क्लब के हिसाब किताब का चिट्ठा अभी तक दफ्तर में क्यों नहीं दिया, बलराज ने अपमानित महसूस किया। मानो उसकी नियत पर शक किया जा रहा और हिसाब के चिट्ठे के साथ अपना इस्तीफा भी दे आया था। मैंने जो हॉकी खेलना छोड़ दिया वो तो बहुत कुछ बलराज की देखा देखी था। दंभ में आकर आज याद करने पर मुझे अपनी नासमझी पर गुस्सा आता है। कप्तान द्वारा यह बता दिए जाने पर कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे अपना गुस्सा भूल जाना चाहिए था और हंसते खेलते हॉकी ग्राउंड पर लौट जाना चाहिए था। हॉकी खेलने में मुझे अपार आनंद मिलता था और कॉलेज टीम का सदस्य होना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मुझे कॉलेज कलर मिलता, मेरा आत्मविश्वास बल्लियों ऊपर उठता। कॉलेज टीम के खिलाड़ी तो छाती तान कर कॉलेज के गलियारों में घूमते थे। यह किस्सा यहां पर खत्म नहीं होता। जब अगले साल मैं एमए का छात्र था तो हॉकी टीम का नया कप्तान खन्ना मुझसे आग्रह करने लगा कि मैं हॉकी टीम में लौट आऊं और मुझे टीम का सेक्रेटरी बनाया जाएगा, पर मैं नहीं माना। हॉकी से नाता तोड़ना मेरे लिए पत्थर की लकीर बन चुका था। वो भी मेरे रवैये पर हैरान हुआ पर चुप हो गया। यदि कॉलेज छोड़ने के बाद मुझे पछतावा ना होने लगता और मैं अपने को वंचित महसूस नहीं करने लगता तो ये मामूली सी घटना बनकर रह जाती, पर यह घटना तो बरसों तक दिल को कचोटती रही। आज भी कभी कभी मैं नींद में अपने को सपने में हॉकी खेलता हुआ देखता हूं। इतना बढ़िया खेलता हूं कि सपने में स्वयं ही अशिष्कर होता हूं। ऐसे दाव खेलता हूं कि ध्यानचंद क्या खेलता रहा होगा। उन्हीं दिनों एक और घटना भी घटी और वो भी दिल पर गहरी खरोच छोड़ गई। उस वर्ष मैं हॉस्टल छोड़कर अपने बहनोई श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकार के साथ ब्रेडलो हॉल के निकट उनके घर पर रहने लगा था। हॉस्टल छोड़ते ही जैसे मैं किसी दूसरे शहर में पहुंच गया था। चंद्रगुप्त जी हिंदी के सुपरिचित लेखक थे। लाहौर में उन दिनों अपना प्रकाशन गृह चला रहे थे। जहां कॉलेज का माहौल अंग्रेजियत का था, वहां चंद्रगुप्त जी के घर में हिंदी साहित्य की चर्चा रहती। गाहे बगाहे लेखकों का आना जाना भी होता। वात्स्यायन जी से पहली बार वहीं पर मिलने का मौका मिला। देवेंद्र सत्यार्थी भी थे। उन्हीं दिनों उपेंद्रनाथ अश को भी साइकिल पर बैठे सड़कों पर जाते देखा करता। लगभग हर शाम चंद्रगुप्त जी के साथ माल रोड पर लंबी सैर को जाता। चंद्रगुप्त जी हिंदी साहित्य की चर्चा करते जो मेरे लिए अभी पार का विषय था। भले ही मेरी एक कहानी और दो कविताएं कॉलेज की पत्रिका रावी में छप चुकी थीं। एक दिन चंद्रगुप्त जी ने बताया कि मुंशी प्रेमचंद्र कुछ दिन के लिए लाहौर आ रहे हैं और हमारे यहां पर निवास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सूचना थी पर मुझ पर उसका ज्यादा असर नहीं हुआ। प्रेमचंद्र की विशिष्टता से तो मैं अनभिज्ञ नहीं था, पर जाड़ों की छुट्टियों में मैं घर जाने के लिए एक एक दिन गिन रहा था। इसमें भी संदेह नहीं कि उन दिनों मेरे मस्तिष्क पर अंग्रेजी साहित्य हावी था और मैंने उस अवसर के महत्व को गौण समझा। चंद्रगुप्त जी ने बहुत समझाया कि ऐसा अवसर बहुत कम मिल पाता है, तुम मेरे साथ रहोगे तो हम दोनों मिलकर उनकी देखभाल भी कर सकेंगे, पर मैं नहीं माना। और ये कहकर कि भविष्य में भी ऐसा अवसर मिल सकता है, मैं रावलपिंडी के लिए रवाना हो गया। प्रेमचंद्र आए, उसी घर में 5 दिन तक ठहरे और जब मैं छुट्टियों के बाद लाहौर लौटा तो वो जा चुके थे। तब भी मुझे कोई विशेष खेद नहीं हुआ। खेद तब हुआ जब कुछ महीने बाद पता चला कि प्रेमचंद्र संसार में नहीं रहे। और भी गहरा दुख तब हुआ जब एक लंबे रेल सफर में गोदान पढ़ता रहा और पुस्तक समाप्त हो जाने पर अभिभूत सा बैठा रह गया। तब इस बात का और भी शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं कितना अभागा हूं जो उस सुनहरे अवसर को खो बैठा। कभी कभी सोचता हूं कि जिंदगी में मैंने अपनी इच्छाओं से विवश होकर कोई भी दो टूक फैसला नहीं किया। मैं स्थितियों के अनुरूप अपने को ढालता रहा हूं। अंदर से उठने वाले आवेग और आग्रह तो थे, पर मैं उन्हें दबाता भी रहता था। मैंने किसी आवेग को जुनून का रूप नहीं लेने दिया। मैं कभी भी ये कहने की स्थिति में नहीं था कि जिंदगी में यही एक मेरा रास्ता है, मैं इसी पर चलूंगा। कभी कभी सोचता हूं कि यदि साहित्य सृजन जीवन की सच्चाई की खोज है तो जीवन के अनुभव इस खोज में सहायक ही होते होंगे। इस तरह जीवन के अनुभवों को गौर तो नहीं माना जा सकता। इन अनुभवों से दृष्टि भी मिलती है, सूझ भी बढ़ती है, लेखक के संवेदन को भी प्रभावित कर पाते होंगे। मैं इस तरह की युक्तियां देकर अपना ढांढस बंधाता रहता था। आज के अतीत संस्मरण, भीष्म साहनी,